आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार, मेरा नाम दिव्या है और हम अध्याय 9 संविधान एक जीवन दस्तावेज पर चर्चा कर रहे थे। हमने पिछले टॉपिक में जाना कि हमारा जो संविधान है वो थोड़ा लचीला भी है, थोड़ा कठोर भी है। वो इस मायने में लचीला और कठोर है कि वो संविधान को बदलने की जो प्रक्रिया दी गई है उसके माध्यम से हमारा संविधान हमारी संसद को शक्ति देता है कि समय अनुसार परिस्थिति अनुसार संविधान में संशोधन किए जा सके। ये जो संशोधन है उसकी शक्ति हमारे पास आर्टिकल 368 में दी गई है। वहां पर साफ तौर पर लिखा है कि संसद को अगर लगता है कि कोई उपबंध में बदलाव करना चाहिए तो वो बदलाव कर सकती है, लेकिन ये जो बदलाव है उसकी जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी कठोर है क्योंकि उसमें दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका होता है कि संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से उस संशोधन को पारित करें, और दूसरा तरीका वो थोड़ा और कठोर हो जाता है जहां पर कहा जाता है कि पहले संसद दोनों सदन विशेष बहुमत से पास करें, साथ में आधे राज्य कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाएं भी उस अनुमोदन को पारित करें, तब जाकर संशोधन किया जाएगा संविधान। तो कल तक हमने इतना सीखा था कि किस तरीके से विशेष बहुमत की प्रक्रिया के द्वारा हम संशोधन कर सकते हैं। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और पृष्ठ क्रमांक 204 पर, तो आप पेज नंबर 204 पर आ जाएं। वो कहता है राज्यों द्वारा अनुमोदन। तो देखिए, हमने पढ़ा कि एक प्रक्रिया है जहां पर सिर्फ संसद का विशेष बहुमत चाहिए होता है, परंतु क्योंकि हम एक संघ हैं जहां पर केंद्र और राज्य की शक्तियों का वितरण है और राज्य भी जनप्रतिनिधित्व का एक माध्यम है, इसीलिए कई मुद्दे ऐसे हैं, कई अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए राज्यों की हाँ अर्थात राज्यों का परामर्श, उनकी सहमति होना अति आवश्यक है। तो हमारी देश की जो संरचना है वो संघीय है। जब राज्यों की शक्तियां केंद्र सरकार पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है, तो इसी बात को ध्यान रखते हुए संविधान में राज्यों की शक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि जब तक आधे राज्यों की विधान पालिकाएं किसी संशोधन विधेयक को पारित नहीं कर देती, तब तक वह संशोधन प्रभावी नहीं माना जाता। इसका मतलब है कि एक व्यापक सहमति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कुछ अनुच्छेद तो मामले इतने गंभीर हैं या वो राज्यों को भी इतना अफेक्ट करते हैं कि राज्यों की भी सहमति जरूरी है। इसका मतलब है कि हमारे संविधान ने राज्यों के भी अधिकार को बहुत क्लियर बताया है और इसके अंतर्गत राज्यों को संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार दिया। उल्लेखनीय है कि संशोधन की प्रक्रिया के कठोर होने के बावजूद उसे फिर भी काफी हद तक लचीला बनाया गया। लचीला है, डेफिनेटली है, क्योंकि देखिए इसमें भी कहा जा रहा है कि विशेष बहुमत के बाद आपको आधे राज्यों से ही अनुमति लेनी या सहमति लेनी है। ये नहीं कहा कि एक एक राज्य से आपको अनुमोदन कराना है, उनकी बातें माननी। इसमें कहा गया है कि जो भी राज्य हैं, उनकी तरफ से आधे राज्यों की तरफ से साधारण बहुमत चाहिए। तो राज्यों की तरफ से विशेष बहुमत नहीं है, राज्य की जो विधानसभाएं हैं जब उसको पास करेंगी, जब संशोधन के लिए पारित करेंगी, तो 29 में से कम मैंने आपसे कहा 15 राज्य कम से कम होने चाहिए, और ये जो राज्य हैं इनकी जो विधानसभा है उनको साधारण बहुमत से इस संशोधन को पास। तो इस प्रकार देखा जा सकता है कि शर्तों की कठोरता के बावजूद संशोधन करने की प्रक्रिया अव्यवहारिक नहीं, ये बहुत ही व्यवहारिक चीज है। इस तरीके की जो हामी दी जाती है राज्यों से, ये बहुत कोई कठोर प्रक्रिया नहीं है अगर हम किसी सही मुद्दे के लिए संशोधन कर रहे हैं। तो संक्षेप में हमें समझ में आता है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए व्यापक बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रक्रिया में राज्यों को सीमित भूमिका दी गई और हमारे जो संविधान निर्माता थे इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को इतना आसान नहीं बना दिया जाए कि उसके साथ कभी भी छेड़खानी हो। साथ ही उन्होंने ये भी ख्याल रखा कि जो आने वाली पीढ़ी है उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से संशोधन हो। तो संविधान निर्माताओं ने राज्यों को शक्ति दी, पर पूरी शक्ति उनके हाथ में नहीं सौंपी। उन्होंने कहा आधे राज्य, अगर आधे राज्य कहते हैं कि ये बात सही है तो उसको मान लिया जाएगा। ये नहीं कहा कि संसद को एक एक राज्य से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो फिर पता चलता है फिर से कि हमारा संविधान लचीला भी है और थोड़ा सा कठोर भी है। वो राज्यों को भी अधिकार देता है, केंद्र को भी अधिकार देता है और दोनों की जो शक्तियां हैं उसका संतुलन भी बनाए रखता है। और ये जो विशेष बहुमत और राज्यों का अनुमोदन है वो सबसे इसका अच्छा उदाहरण है। तो कई मुद्दे ऐसे हैं जहां पर विशेष बहुमत संसद वाला लिया जाता है, जैसे अगर मौलिक अधिकार में कोई चेंज करना है, नीति निर्देशक तत्व है, वहां पर संसद खुद उसको विशेष बहुमत से चेंज कर सकती है। लेकिन कई मुद्दे जहाँ पे राज्यों का भी अनुमोदन लेना पड़ता है, उसमें खासकर जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है और उपराष्ट्रपति के में हमें कोई चेंज करना हो या कोई हमें नया कर लाना हो जो राज्यों पर भी लगेगा, तो इस तरीके के मामलों में या न्यायपालिका के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना है, तो ये सब चीजों के लिए हमें राज्यों से भी सहमति लेनी पड़ती है। अब हम अगले प्रश्न पर आएंगे जो कहता है इस संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए हैं। तो देखिए पिछले 70 वर्ष में एक आंकड़ा हमें दिया गया कि 12 जनवरी 2019 इतने अंतराल में भारत में 103 बार संशोधन किया जा चुका है। कहां संशोधन किया जा चुका है? संविधान में। मतलब इस अंतराल में 1950 से लेके 2019 तक जब आएंगे तो 103 बार संशोधन हुआ। तो अगर हम देखें ये प्रक्रिया कठोर है तो उसके हिसाब से देखिए संख्या बहुत ज्यादा है, ज्यादा संख्या 103 बार संशोधन होना संविधान में इसकी काफी बड़ा नंबर। तो देखिये अगर संशोधन हुआ है तो इसके पीछे पक्का कोई एक वजह रही होगी, तो अब हम उस वजह को जानते हैं जिसके कारण इतने संशोधन हुए। तो देखिए इसको समझे उससे पहले आप अगले पृष्ठ पर आए। यहाँ पर आपको जो ग्राफ दिए गए हैं ये है पेज नंबर 206। ये दो ग्राफ है आप देख रहे हैं, ग्राफ है। तो जो पहला ग्राफ है वो दिखा रहा है कि एक दशक के दौरान किए गए संशोधन। नीचे आप देख रहे हैं इयर्स लिखे 51 to 60, 61 to 70, ये दशक है, 10 साल का आंकड़ा है। और ये दिखा रहा है कि 71 to 80 है, वहां पर सबसे ज्यादा संशोधन हुए। 81 to 90 यहाँ पर भी काफी संशोधन हुए। दिखा रहे हैं कि 20 से ज्यादा संशोधन इन सालों में किए गए। और जो दूसरा ग्राफ है वो दिखा रहा है 10 संशोधनों की अवधि, इनको संशोधित होने में कितना समय लगा, वो भी जो पहले हैं 10, 20, 30, 40 लेके 100 तक, ये जो संशोधन है इनकी अवधि कितनी रही। तो ये हमारे दो ग्राफ हैं। अब इन दो ग्राफ को अगर हम समझें तब हम समझेंगे कि यहाँ पर संशोधन क्यों हुए। तो देखिए जो पहला ग्राफ है उसमें प्रत्येक 10 वर्षों के दौरान हुए संशोधनों की संख्या, मैंने आपको बताया, आप साल देखिए 51 to 60, 10 साल हो गए। फिर 61 to 70 फिर उन्होंने 10-10 साल में उन्होंने बताया कि कितने संशोधन हुए, कहीं 20 हुए, कहीं 15 हुए, कहीं 25 हुए हैं। ये पहला ग्राफ और इसमें दिए गए स्तंभ उस अवधि के दौरान संशोधनों की संख्या को बता रहे हैं। स्तंभ बने हैं, जो ग्राफ बना हुआ है वो बता रहा है कि कितने संशोधन हुए। तो इसमें ये एक पहला ग्राफ और जो दूसरा ग्राफ है जो नीचे उसके दिया है, दूसरे ग्राफ में प्रत्येक 10 संशोधनों की अवधि को दिखाया है। जब दो 10 संशोधन हुए सबसे ज्यादा वो किस अवधि में हुए, तो आप देखिए 1970 से 1990 यहाँ पर इन दो दशकों में सबसे ज्यादा संशोधन हुए। आप फिर से अपने प्रश्न पर आइए, देखिए 1970 से 90 आप ये देख रहे हैं, मतलब ये सबसे कम समय लगा यहाँ संशोधन होने में। तो इन दोनों यहाँ पर ये जो 1970 से 90 तक दो दशकों के दौरान बड़े स्तर पर संशोधन हुए। और दूसरी ओर दूसरा ग्राफ हमें एक और चीज बता रहा है कि 1974 से 76 मतलब 74 से 76 का जो ये समय है उसके बीच में 10 संशोधन हुए, 3 साल के अंदर ही 3 साल। आप 74 टू 76 तो आप दूसरा ग्राफ देखेंगे, यहाँ पर देखिए कि जो सबसे कम दिखा रहा है समय का मतलब है वहां जल्दी संशोधन हुए, कम संशोधन माफ कीजिएगा ज्यादा संशोधन हुए कम समय में। तो 1970 के समय आप देखिए जो ये जो बॉक्स बने नीले डब्बे बने हुए छोटे हैं, वो तो दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 3 साल में ही, मात्र 3 साल 74 से 76 के अंदर ही 10 संशोधन हो गए। और फिर जब आगे देखते हैं तो 2001 से लेकर 2003 फिर वही 3 वर्ष, उन 3 वर्षों में भी सबसे ज्यादा 10 संशोधन हुए। आप अंतर समझे, ये कह रहे हैं दूसरे ग्राफ में हमें बता रहे हैं कि कोई कोई बीच में समय ऐसा आया कि 10 साल तक हो सकता है कोई संशोधन ना हुआ हो, लेकिन एक फेज ऐसा भी आया जो पहला फेज था 74 से 76 जहां पर 3 साल के अंतर्गत ही 10 संशोधन हो गए। उसके बाद 2001 से लेकर 2003 में भी इतने से बस 3 साल के अंदर 10 संशोधनों का सामना करना पड़ा हमारे संविधान। तो ये दो जो समय है, तो जो पहला है 74 से 76 उस समय तो कांग्रेस की सत्ता थी, उनको बहुमत था और सारी अधिकतर जितनी भी विधानसभाएं थी वहां पर भी उनको बहुमत था, तो उनके लिए बहुत आसान था संशोधन करना। तो एक ही पार्टी की सरकार थी ऑलमोस्ट हर स्टेट में और केंद्र में भी, तो वो इजी। लेकिन जो 2001 से लेकर 2003 का समय है वहां पर कोई एक पार्टी की सत्ता नहीं थी, क्योंकि वो गठबंधन का दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी का एनडीए था उसकी सरकार, उसमें सब अलग अलग पार्टी अपने बस अपने लक्ष्यों को लेकर मिले थे। अपोजिशन भी गठबंधन था और जो सरकार थी वो भी गठबंधन की थी, और जो राज्य थे जिनसे आपको अनुमति लेनी होती है उन सब में भी अलग अलग दलों की सरकारें काम कर रही, मतलब तमिलनाडु में कोई भाजपा या कांग्रेस नहीं थी, कभी वहां द्रमुक की सरकार थी कभी अन्ना द्रमुक। आप पंजाब ले ले तो वहां अकाली दल, आप केरल में गए तो कम्युनिस्ट पार्टी। ये जो 2001 से 2003 का समय बड़ा ही रोचक है, हमें लगता है कि एक ही पार्टी की सत्ता होगी तो फटाफट संशोधन होंगे, वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देंगे। एक समय हमने देखा कि जब कांग्रेस की सत्ता थी, पर ये बात तब गलत साबित हो रही है 2001 से 2003 के बीच में जब अलग अलग दलों की सरकारें थी, केंद्र में भी गठबंधन था, राज्यों में भी अलग सरकारें थी, फिर भी जो विरोधी दल है और जो सरकार है उनमें प्रतिद्वंदिता भी थी, लेकिन यहाँ पर संशोधन तो बहुत हुए 3 साल के अंदर 10 नहीं। इसीलिए इससे साबित होता है कि संशोधनों के लिए कोई एक पार्टी के बहुमत की जरूरत नहीं है, अगर संशोधन देश के हित के लिए है तो सारे दल एक साथ आगे आते हैं और वो नए नए प्रावधानों को रूप देते हैं। तो ये तो हमने एक विशिष्टता ही है हमारे देश के लोकतंत्र का, पर्याचक है कि अलग अलग दलों ने भी मिलकर राष्ट्र के बारे में। अब संख्या को भी कहते हैं कि इतने से 70 साल के अंतर्गत 103 संशोधन, और कहा भी गया है कि कहते हैं कि भारत में बहुत संशोधन किए गए, और ये 103 थोड़ा सा सुनने में भी अजीब लगता है। लेकिन देखिए जब आप इन दोनों ग्राफ को आपने देखा तो आपको समझ में हमें आता है कि इन संशोधनों के पीछे राजनीतिक सोच नहीं थी कि मुझे अपना राजनीतिक फायदा दे। संविधान के पहले दशक को छोड़ दें, उसको छोड़कर सभी दशकों में संशोधन हुए हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि संशोधनों के पीछे सत्ताधारी दल की राजनीतिक सोच है, ऐसा नहीं है। साथ में ये जो संशोधन है उस समय की जरूरत के अनुसार किए गए। उस समय जब हमने कहा ना कि हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि समय में बदलाव आएगा, तो परिस्थिति के हिसाब से बदलना पड़ेगा, और ये जो बदलाव हुए उस समय जो बातें छूट गई थी जब संविधान का निर्माण हुआ, या कुछ चेंजेस सोसाइटी में आए, पॉलिटिक्स में जो चेंजेस आए, उसकी वजह से ये संशोधन किए गए। तो ये बात हम समझ गए कि जो हमारा मूल संविधान है वो हमें परिवर्तन की आज्ञा देता है। तो इससे लोग ये भी प्रश्न उठाते हैं, क्या तो मूल संविधान है वो कमजोर था या बहुत लचीला है? ऐसी बात नहीं है, उसको भी हम आगे समझेंगे कि इन संविधानों में जो संशोधन किए गए उसके पीछे कारण क्या था। तो अब हम समझ गए कि संशोधन किस प्रकार से समयानुसार हुए हैं। अब हम जानेंगे कि संशोधनों की विषय वस्तु। तो देखिए जितने भी अभी तक संशोधन हुए हैं उसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला जो श्रेणी है उसमें वो संशोधन है जो तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के हैं, और वो संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट बनाने की, उनकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। पहले है टेक्निकल, उन्हें आप सिर्फ तकनीक की भाषा में उनको संशोधन कह सकते हैं, मतलब उन्होंने सिर्फ आप कहना थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया, टेक्निकली तो थोड़ा सा चेंज किया पर कोई मूल बदलाव उसके अंदर नहीं। तो ये पहली श्रेणी थी। दूसरी श्रेणी थी उसके बाद, जैसे उदाहरण के लिए हम जो पहली श्रेणी की बात करते हैं, तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 से 62 वर्ष करना पड़ा, ये 15वां संशोधन। और उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का भी वेतन बढ़ाया गया। तो एक और उदाहरण है कि इसमें जो विधायकों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के लिए सीटों के आरक्षण संबंधी उपबंध आए। तो मूल उपबंध में आरक्षण की बात 10 वर्ष के लिए की गई, ठीक है, जब आरक्षण लगा तो कहा गया था कि 10 वर्ष के लिए रहेगा, लेकिन फिर आगे आने वाली सरकारों को लगा कि अभी संशोधन कर इसको 10 वर्ष को और बढ़ाना पड़ेगा, आरक्षण की और जरूरत है, तो उन्होंने संशोधन करके अब 10 वर्ष को फिर आगे 10 वर्ष को फिर आगे कर दिया। इस तरीके से संशोधन हुआ, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मूल उपबंध से कोई छेड़छाड़ की, आरक्षण तो दिया हुआ था, बस उस आरक्षण को हमने संशोधन कर आगे। तो ये क्या हुआ, ये एक टेक्निकल संशोधन हुआ, मतलब इसमें कोई संविधान के ना छेड़छाड़ नहीं हुई थी, संविधान के कुछ आरक्षण को ही हटा दिया, या आरक्षण नहीं था तो आरक्षण को ला दिया। कहा गया था कि संविधान ये जो आरक्षण है 10 साल के लिए दे रहा है, पर जब सरकारों को या बाकी ग्रुप को ऐसा लगा कि ये आरक्षण थोड़ा बढ़ना चाहिए तो बस टेक्निकली उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो ये है पहले तरीके का संशोधन जो हमारे यहाँ हुआ। और मूल संविधान में देखिए राष्ट्रपति की भी पद की चर्चा हुई थी कि जिसमें कहा गया था कि हमारी जो संसदीय व्यवस्था है, हमारा जो संविधान है उसमें जो हमारी संसदीय व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार वो कार्य करते हैं। पर इसमें एक अनुच्छेद बनाया गया संशोधन करके, जिसमें लिखा गया कि मंत्री परिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी। तो देखिए, वो तो संविधान ने कहा ही था कि मंत्री परिषद की उनको राय माननी चाहिए, तो उसको ये कहकर कि इनको बाध्यकारी है, उसमें भी कोई संशोधन ऐसा नहीं कि मूल उपबंध को हटा दिया गया, पर उसकी थोड़ी और आसानी से व्याख्या कर दी गई किसी बात कि जो संसद है उसमें जो हमारी मंत्री परिषद है उसकी सलाह लेनी चाहिए राष्ट्रपति, ये कहा गया। आगे बस ये कह दिया गया कि मंत्री परिषद की सलाह उनको माननी ही चाहिए, तो इसकी व्याख्या थोड़े बेहतर ढंग से दी गई, यही एक तरीके का संशोधन था। तो जो हमारे यहाँ हमें ये समझना पड़ेगा कि कुछ थोड़े से संशोधन छोड़ दें जो जरूर थोड़ी प्रक्रिया से बाहर चले गए थे, जिसको पे कई विवाद हुए, जैसे मौलिक अधिकार था, प्रॉपर्टी का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया, उस पर विवाद हुआ, और नीति निर्देशक तत्वों को लेकर भी विवाद होता है कि वो बाध्यकारी क्यों नहीं है। इस तरीके के विवादों को अगर हम छोड़ दें तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जो भी अभी तक हमारे संविधान में संशोधन हुए हैं वो सिर्फ तकनीकी ही है, प्रशासकीय ही है, उसको एक मूल छेड़छाड़ हमारे संविधान के साथ आज तक नहीं की गई। तो अब है अगला इसका टॉपिक, व्याख्यान विभिन्न दृष्टिकोण। अब हमने कहा था ना कि संविधान हमारी न्यायपालिका को, हमारी संसद को अपनी व्याख्या करने की अनुमति देता है, तो ये व्याख्याएं सबका अपना अपना एक नजरिया होगा इस व्याख्या करने को। अब हम व्याख्या को समझेंगे कैसे होती है। तो संविधान की व्याख्या को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच अक्सर मतभेद होते हैं, और ये संविधान के जो अनेक संशोधन है इन्हीं मतभेदों की उपज है। इस तरह के टकराव पैदा होने पर संसद को संशोधन का सहारा लेकर संविधान की किसी एक व्याख्या को प्रामाणिक सिद्ध करना पड़ता है। प्रजातंत्र में विभिन्न संस्थाएं संविधान अपनी शक्तियों को अपने अपने तरीके से व्याख्या करती है, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी जरूरी है। कई बार संसद न्यायिक व्याख्याओं से सहमति नहीं होती, उसे न्यायपालिका के नियमों को नियंत्रित करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, मतलब कई बार दोनों में तकरार हो जाती है, तो सरकार और न्यायपालिका। न्यायपालिका कहती नहीं ये मुद्दा ऐसे होगा, और सरकार कहती है नहीं होगा। अगर न्यायपालिका की बात को सरकार ठुकराना चाहती है तब वो संशोधन करती है, और खासकर 1970 से 1975 का ये जो कालखंड था, इन 5 सालों में न्यायपालिका और सरकार के बीच बहुत तकरार हुई, और इसी कारण जो हमने पढ़ा ना 74 से 76 3 साल में ही 10 संशोधन हो गए, तो ये एक कारण ये भी था कि न्यायपालिका और सरकार में बहुत विरोधाभास, और इसी कारण अलग अलग संशोधन हुए, और सरकार ने अपनी तरफ से संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या की, क्योंकि उनका उनकी जो सोच थी वो न्यायपालिका की सोच से मेल नहीं खा रही थी। न्यायपालिका तथा अधिकारों से संबंधित अध्यायों में आप संसद तथा न्यायपालिका के बीच उठने वाले विवादों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। इस संबंध में हम 3 दृष्टांतों का उल्लेख कर सकते हैं। पहला देखिए, हम कहते हैं मौलिक अधिकारों नीति निर्देशक तत्वों को लेकर संसद और न्यायपालिका के बीच मतभेद पैदा होते रहते हैं। आपने पढ़ा भी था कि निजी संपत्ति को लेकर जो राइट टू प्रॉपर्टी था, तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था लेकिन सरकार ने इसको हटा दिया, और इसको लेकर तो सरकार और न्यायपालिका में बहुत गंभीर किस्म का विरोधाभास चलता रहा। तो 1970 से 75 के काल में संसद ने न्यायपालिका की प्रतिकूल व्याख्या को निरस्त करते हुए बार बार संशोधन किए। जब न्यायपालिका कहता था नहीं ये ऐसे होगा तो हमें राइट जाना है, तो संसद क्या करती थी, संशोधन करके कहती थी कि नहीं हमें लेफ्ट जाना है, फिर न्यायपालिका अपना व्याख्या करेगी कि नहीं लेफ्ट नहीं जाना है राइट ही जाना है। तो ये इस तरीके से इनकी तकरार चली। तो ये जो दौर था 1970 से 75, ये यहाँ पर बहुत घटनाएं घटी, महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं, और इसीलिए जो हमारा संवैधानिक इतिहास है उसके लिए ये जो समय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जब हम आप अगले साल जब इसको पढ़ेंगे तब आपके बारे में और ज्ञान आपको प्राप्त होगा कि किस तरीके से न्यायपालिका और सरकार की उनके बीच तकरार हुई और इस समय किस तरीके से उन दोनों ने एक दूसरे को एक तरीके से कहेंगे काटने की कोशिश की। दोनों ही अपनी जगह सही थे लेकिन एक दूसरे की बात मानने में थोड़ी सी उन्हें दिक्कतें हुई, परंतु जो भी हुआ वो हमारे संविधान में डेफिनेटली उससे बहुत सारे संशोधन हुए। अब है राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से संशोधन। अब एक बात ये भी संशोधन, एक तो तकनीकी संशोधन हो गया, एक न्यायपालिका और संसद दोनों में सरकारों में अनबन हुई, फिर एक संशोधन हुआ, और कई संशोधन ऐसे हैं जिसमें राजनीतिक दलों की आपसी सहमति हुई। मतलब ये जो संशोधन है ये जो किसी तरीके से जो संशोधन हुए वो राजनीतिक दर्शन और समाज की आकांक्षाओं को समाहित करके किए गए। मतलब खासकर 1984 के बाद जो संशोधन हुए, तो यहाँ पर जो संशोधन हुए सरकारी गठबंधन की थी, फिर भी सभी सरकारें की राज्य की भी केंद्र की भी, केंद्र में भी कुछ अलग दल थे, राज्यों में भी अलग अलग दल थे, सबने आम सहमति से मिलकर संशोधन किए। और संशोधनों के इस दीर्घ क्रम की शुरुआत दल बदल विरोधी कानून की, दल बदल विरोधी कानून, ये 52 आपका अमेंडमेंट है। हमने इसको पहले भी पढ़ा था जहां पर कहा गया था कि आप ऐसे दल नहीं बदल सकती कि एक पार्टी से जीते और जाकर दूसरी पार्टी को संसद में उसके लिए वोट कर, है ना, आप जीते कांग्रेस से और कहें हम तो बीजेपी के लिए वोट करेंगे, या आप संसद सांसद बने बीजेपी के और आप कहें हम कांग्रेस को वोट करेंगे, तो आप ऐसे दल नहीं बदल सकते। तो ये जो दल बदल विरोधी कानून आया तो सारी पार्टियों ने मिलकर ये संशोधन में हिस्सा लिया, क्योंकि सभी को इससे घाटा होता था, देश को भी इससे नुकसान होता। और यही जो समय है यहाँ पर जो चुनाव की हमारी मतदान की आयु थी, ये भी हमने पहले पढ़ा था कि पहले 21 वर्ष से कम व्यक्ति वोट नहीं दे सकता था, परंतु उसके बाद हमारा 61वां संशोधन हुआ और कहा गया कि 18 वर्ष का व्यक्ति वोट दे सकता है। तो यहाँ पर भी सबकी आम सहमति हुई क्योंकि एक ही अधिकार था, देखिए जनता के लिए अधिकार था तो सारी पार्टी के लिए दिया। तो इस काल में नौकरियों में भी आरक्षण सीमा बढ़ाने की बात हुई, कई यहाँ पे निर्णय लिए गए, जो 74 और 73 अमेंडमेंट हम जो पढ़ते हैं वो भी इसी समय का है, जहां पर हम बात करते हैं कि कितने सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुए। तो सन 92 से 93 के बाद इन कदमों को लेकर देश में एक आम सहमति का माहौल पैदा हुआ है और इन मुद्दों से संबंधित संशोधन पारित करने में कोई खास दिक्कत नहीं है। ये जो आम सहमति है वो उन मुद्दों को लेकर बनी जो देश के लिए बहुत जरूरी थे, चाहे वो मतदान की आयु हो, डेफिनेटली वो हम सबसे रिलेटेड है, दल बदल है, उसके बाद जो हमने पंचायती राज व्यवस्था हम लाए, स्थानीय शासन के जो हमने अमेंडमेंट किए संशोधन किए, वो सब आम सहमति से बने। तो इससे ये बहुत जो सहमति का माहौल बना, पॉजिटिव माहौल बना देश में, उसका बहुत बड़ा रोल है इन संशोधनों को लाने में। अब बात आती है कि कुछ संशोधन विवादास्पद भी, अब हम इन विवादास्पद संशोधनों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे एक आइडिया होगा हमें कि देखिए अभी तक जो हमने चर्चा की भावना नहीं पैदा होनी चाहिए कि संविधान में संशोधन करने के प्रश्न पर आज तक कोई विवाद नहीं हुआ। देखिए अभी तो हम सब बड़ा पॉजिटिव पढ़ रहे थे, है ना, कि कोई विवाद नहीं हुआ, सबने मिलकर आम सहमति से संशोधन किया, पर एक समय ऐसा था जहाँ पर इन संशोधनों को उतना अच्छा नहीं माना गया, ये देश के लिए पॉजिटिव भी नहीं माने गए और बहुत ज्यादा बहस रही, खासकर न्यायालय और राजनीति की। और ये समय है 1971 से 76। इस काल में विपक्षी दल इन संशोधनों को लेकर थोड़ा संदेह रखते थे, क्योंकि इस समय जो सत्तारूढ़ दल था, खासकर उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी 71 से 75, इस समय बहुत ऐसे चेंजेस हुए जिससे हमारा मूल स्वरूप चेंज हो गया हमारे संविधान का। खासकर 38वां, 39वां और 42वां जो संशोधन आया वो बहुत विवादास्पद रहे, और कहा जाता है कि उस समय इनका जो संशोधन हुए उन्होंने थोड़ी सी छेड़खानी की हमारे मूल स्वरूप से, और यही समय था जो एक भारतीय राजनीति के लिए जिसे हम काला समय कहते, क्योंकि यहाँ पर आपातकाल लग गया था हमारे देश में 1975। जून 1975 में यहाँ पर इन तीनों संशोधनों की वजह से संविधान के बुनियादी जो बुनियाद थी उसी को ही चेंज कर दिया गया, और आपातकाल मतलब इमरजेंसी लग गई, सारे राज्यों की पावर चली गई, पॉलिटिकल पार्टीज की पावर चली गई, काफी लोग जेलों में भी गए, सरकारों ने बंद कर दिया था, राष्ट्रपति शासन लग गया था, इस तरीके का मामला हुआ था, और इसी बात को लेकर काफी देश में बहस भी चली। तो जो पिछले 3 दशकों में संविधान की बुनियादी संरचना को लेकर देश की सभी संस्थाओं में अब सहमति हुई है, और वास्तव में संविधान का 42वां संशोधन एक बड़ा संशोधन है। इस संविधान के संशोधन ने हमें बहुत प्रभावित किया, और इस प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद मामले में दिए गए निर्णय को भी चुनौती था, यहाँ तक कि इसके तहत लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। तो ये संशोधन जब हुआ था 42वां, वहां पर क्या हुआ कि चुनाव ही नहीं हुआ, मतलब 5 वर्ष में चुनाव होने थे, उसको 6 वर्ष में किया गया। केशवानंद भारती मामला हमने पढ़ा था, जहाँ पर जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय, उसने कहा था कि सरकार संविधान के मूल रूप को नहीं चेंज कर सकती, पर सरकार ने बात नहीं मानी, उन्होंने मूल रूप को ही चेंज कर दिया। एक तरीके से पूरा एक हिस्सा संशोधन का नए तरीके से, और ये जो समय था इसमें जो खासकर जो 42वां संशोधन है उसने जो न्यायालय की जो भी शक्तियां थी, समीक्षा की शक्तियां, पुनरावलोकन की शक्तियां, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये जो आप संशोधन के द्वारा हम जो प्रस्तावना है, 7वीं अनुसूची है, और जो भी अनुच्छेद है, मतलब कम से कम 53 अनुच्छेद थे जिनमें परिवर्तन कर दिए गए, और बहुत से मैंने आपको बताया सांसद जेल भी गए विपक्षी पार्टी के, परंतु फिर 1977 में चुनाव हुए और इंदिरा गांधी की सरकार थी जिन्होंने सारे बदलाव किए थे, आपातकाल लगाया था, उनकी नई सरकार आई, जनता दल की सरकार आई, वो कई दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी, इन्होंने फिर कुछ संशोधनों को परिवर्तन भी किया, और जो उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार ने जो निर्णय लिए थे उनको भी हटाकर कोशिश की कि जितना ज्यादा से ज्यादा संवैधानिक संतुलन लागू किया जा सके उसे लागू किया जाए। तो ये जो 42वां संशोधन है ये हमारे लिए मतलब एक तरीके से कहा जाता था कि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके की भी बातें की जाती थी कि जो ये संशोधन आया है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टी हो, न्यायालय हो, मौलिक अधिकार हो, सबको बदल दिया गया, और खासकर जब देश में आपातकाल लगा, तो ये जो समय है ये ही एक थोड़ा सा विवादास्पद समय माना जाता है। अदरवाइज हमारे यहाँ जो भी संशोधन हुए वो आम सहमति से ही हुए, सबने मिलकर लिए, और कोशिश की गई है और कोशिश की भी जाती है कि जो भी संशोधन हो वो आम सहमति से बने देश के लिए। तो आज के लिए इतना ही है, हम यही विराम लेते हैं, और हमने आज देखा कि किस तरीके से राज्य अनुमोदन करते हैं, राज्यों की सहमति जरूरी है, और ये हमारे संविधान को थोड़ा सा कठोर भी बनाता है कि राज्यों की सहमति लेनी है, परंतु कहता है कि सारे राज्यों से सहमति नहीं लेनी, तो थोड़ा सा लचीला भी बनाता है। हमने ये भी जाना कि ये जो पूरा कालखंड है हमारे संविधान का, उसमें 103 संशोधन हुए, और खासकर एक समय हम देखते हैं कि 1970 से 1990 के जो दो दशक है इनके बीच में काफी संशोधन हुए, खासकर 1974 से 76 तीन साल के अंदर 10 संशोधन हुए, और उसके बाद 2001 से लेकर 2003 जब गठबंधन की सरकारें थी तभी भी संशोधन 10 हुए। तो ये संशोधन हुए, और जो संशोधन हुए वो सब अलग अलग तरीके के हैं। पहले श्रेणी में हम कहते हैं कि वो संशोधन है जो तकनीकी कारण से हुए, जैसे हमने आपको आरक्षण का उदाहरण दिया। दूसरे बार जो संशोधन हुए वो व्याख्या थी, मतलब वो संशोधनों में न्यायपालिका ने अपनी व्याख्या दी, पर सरकार को व्याख्या पसंद नहीं आई तो सरकार ने संशोधन करके अपनी व्याख्या को प्रस्तुत किया। और जो तीसरे प्रकार के संशोधन कौन से थे, जिसमें आम सहमति बनी, यहाँ पर खासकर जो दल विरोधी कानून है, मतदान की आयु जो बढ़ाई गई, ये सब आम सहमति से बने। तो तीन प्रकार के हमारे देश में श्रेणियां हैं संशोधन की। एक हमने विवादास्पद समय भी जाना 1971 से 1976, जहाँ पर खासकर 42वां संशोधन जिसने संविधान के मौलिक रूप को ही बदल दिया था, और इसी कालखंड में 1975 में देश में आपातकाल लगा था जिसमें विपक्ष के काफी नेताओं को जेल भी भेजा गया। परंतु जब 1977 में चुनाव हुए तो जो उस समय की सरकार थी उसकी हार हुई और नई सरकार आई, जिसने बताया कि देश में लोकतंत्र अभी भी जीवित है। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे कल फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।